एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। इस चर्चा का आधार है एकत्र एआई द्वारा विश्लेषित विलियम फॉकनर, ए कंप्लीट लिटरेरी बायोग्राफी के मुख्यांश। आज की ज्ञान गोष्ठी में हम अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम आते ही मतलब एक जटिलता, एक गहराई और अमेरिकी दक्षिण की वो धूप छांव वाली तस्वीरें जहन में घूमने लगती हैं। विलियम फॉकनर।
बिल्कुल, और एक ऐसे लेखक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, पुलित्जर भी मिले, लेकिन जिनकी कहानियां पढ़ना सच कहूं तो एक चुनौती भी है और साथ ही एक बहुत गहरा अनुभव भी।
हाँ, ये बात तो है।
फॉकनर सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, वो हमें इतिहास, याददाश्त और इंसान के अंदर जो संघर्ष चलते रहते हैं ना, उसके एक चक्रव्यूह में ले जाते हैं एक तरह से।
तो आज हमारा मकसद यही है कि फॉकनर के इस चक्रव्यूह को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये जानें कि वे आज भी क्यों इतने प्रासंगिक हैं, उनकी वो जो खास शैली है वो क्या है, और उनकी बनाई वो काल्पनिक दुनिया योकना पटाउफा काउंटी, उसके असल में मायने क्या हैं।
हाँ जरूर, तो चलिए इस साहित्य खोज पर निकलते हैं।
ठीक है,
देखिए फॉकनर को समझने के लिए ना सबसे पहले उस जमीन और उस जमाने को समझना बहुत जरूरी है जहां वो पले बढ़े। 1897 में जन्म हुआ मिसिसिपी में। अब ये वो समय था जब अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दक्षिण अपनी हार, वो जिसे लॉस्ट कॉज कहते हैं, उसके साए से निकल नहीं पाया था।
अच्छा।
समाज पर उसका बहुत भारी असर था और नस्लीय भेदभाव वो तो मतलब चरम पर था। समाज जैसे पुरानी परंपराओं और एक बदलते हुए वक्त के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था, और ये जो तनाव है ना, यही फॉकनर के लेखन की आत्मा है कह सकते हैं।
और उनका निधन हुआ 1962 में, तो मतलब उनका पूरा जीवन ही बड़े बदलावों का गवाह रहा।
हाँ।
दो विश्व युद्ध देखे उन्होंने, महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन का दौर देखा, और फिर नागरिक अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत थी।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कहीं ना कहीं इनकी कहानियों की पृष्ठभूमि में आपको महसूस होगा, गूंजता रहेगा।
हाँ,
और अगर साहित्यिक दुनिया की बात करें तो वहां भी बड़ी हलचल थी। ये मॉडर्निज्म मतलब आधुनिकतावाद का दौर था। जेम्स जॉयस जैसे लेखक थे, टीएस एलियट थे, ये लोग कहानी कहने के जो पुराने तरीके थे ना, उन्हें तोड़ रहे थे।
अच्छा, कैसे?
सोचिए, जैसे कोई सीधी सपाट सड़क पर चलने के बजाय मन की जो उबड़ खाबड़ पगडंडियां होती हैं उन पर चलने लगे। फॉकनर ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने किरदारों के दिमाग के अंदर उतरने की कोशिश की, जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना प्रवाह कहते हैं।
हाँ, सुना है इसके बारे में।
जहाँ विचार, यादें, भावनाएं, वो सब बिना किसी खास क्रम के जैसे मन में बहती हैं वैसे ही कागज पर उतारती। और समय, समय के साथ तो जैसे उन्होंने खिलवाड़ किया, कहानी कभी आगे जाती है, कभी अचानक अतीत में कूद जाती है।
तो मतलब उन्होंने ये नई तकनीकें अपनाई, लेकिन उनका इस्तेमाल किया अपनी मिसिसिपी की मिट्टी की गंध दिखाने के लिए, वहां के जो सामाजिक मुद्दे थे, खासकर नस्ली सवाल, उनको खुरेदने के लिए।
बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसीलिए शायद उन्हें सदर्न रेनेसा का इतना अहम चेहरा माना जाता है। वो उन लेखकों में थे जो दक्षिण की सिर्फ वो रोमानी खूबसूरत तस्वीर नहीं दिखा रहे थे, बल्कि उसके जख्मों पर, उसके अंदर जो विरोधाभास थे, उन पर भी उंगली रख रहे थे। और हाँ, उस समय फ्रॉयड का मनोविज्ञान भी आ रहा था, जिसने इंसान के छुपे हुए मन को, उसकी दबी हुई इच्छाओं को समझने के नए रास्ते खोल दिए थे। इसका असर भी फॉकनर के किरदारों की जटिलता में साफ दिखता है।
अच्छा, अब जरा उनके जीवन पर आते हैं। विलियम कथवर्ड फॉकनर, एक बात मेरे मन में आ रही थी, उन्होंने अपने नाम फॉकनर में ये यू क्यों जोड़ लिया था बाद में? फॉकनर क्यों बन गए?
हाँ, ये दिलचस्प है। पक्के तौर पर तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक थ्योरी ये है कि शायद अपने परदादा कर्नल विलियम क्लार्क फॉकनर से थोड़ी दूरी बनाने के लिए। वो खुद भी लेखक थे और थोड़ी कह सकते हैं दबंग शख्सियत थे।
अच्छा,
तो शायद ये परदादा उनके लिए प्रेरणा भी रहे होंगे और कहीं ना कहीं एक बोझ भी। खैर, उनका बचपन बीता ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में, और यही ऑक्सफोर्ड शहर उनके काल्पनिक जेफरसन शहर का मॉडल बना, उनकी कहानियों का केंद्र।
और ये सुना है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में उनका मन ज्यादा नहीं लगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया उन्होंने। औपचारिक शिक्षा से ज्यादा उन्हें घर पर जो कहानियां सुनी माँ और दादी से, और एक स्थानीय वकील थे फिल स्टोन, उनके जैसे मार्गदर्शकों से सीखने को मिला। स्टोन ने ही उन्हें आधुनिक कविता, खासकर फ्रांसीसी प्रतीकवादियों और स्विम्बर्न जैसे कवियों से मिलवाया। तो ये जो अनौपचारिक शिक्षा थी, ये शायद उनके लिए ज्यादा जरूरी साबित हुई।
लिखने की शुरुआत कैसे हुई? कविताओं से?
हाँ, पहला संग्रह आया द मार्बल फोन 1924 में, कविता संग्रह था। लेकिन असल मोड़ आप कह सकती हैं तब आया जब वो न्यू ऑलियंस में लेखक शरवुड एंडरसन से मिले।
अच्छा, शरवुड एंडरसन?
हाँ, एंडरसन ने ही उन्हें गद्य मतलब फिक्शन लिखने के लिए प्रेरित किया। कहा कि तुम अपनी जड़ों के बारे में लिखो, मिसिसिपी के बारे में। पहला उपन्यास आया सोल्जर्स पे 1926, लेकिन 1929 में सैटोरिस के साथ उनकी उस दुनिया की नींव पड़ी जो अमर हो गई योकना पाटाउफा काउंटी।
और इसके ठीक बाद ऐसा लगता है जैसे कोई रचनात्मक ज्वालामुखी फट पड़ा हो, मतलब द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, लाइट इन ऑगस्ट, एब्सलम एब्सलम, ये सब महान रचनाएं कुछ ही सालों के अंदर आ गईं।
हाँ हाँ, वो अविश्वसनीय दौर था 1929 से 1936 तक, अद्भुत रचनात्मकता का समय। लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा महान रचनाएं, उस वक्त इन्हें कोई खास पहचान या पैसा नहीं मिला।
सच में?
हाँ, फॉकनर आर्थिक तंगी से लगातार जूझते रहे और इसी वजह से उन्हें हॉलीवुड जाना पड़ा। वहां पटकथाएं लिखनी पड़ी। वो इसे पसंद नहीं करते थे, कहते थे ये वेतन वाली गुलामी है। हालांकि वहां भी उन्होंने हॉवर्ड हॉक्स के साथ द बिग स्लीप, टू हैव एंड हैव नॉट जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए काम किया।
तो एक तरफ ये महान साहित्यिक रचनाएं चल रही हैं और दूसरी तरफ पैसों की किल्लत है, हॉलीवुड का काम है जिसे वो पसंद भी नहीं करते। ये विरोधाभास उनके जीवन में तो था ही, क्या उनके लेखन में भी झलकता है?
हाँ बिल्कुल, बाहरी सफलता और अंदरूनी संघर्ष का ये जो द्वंद है, ये उनके कई किरदारों में आपको दिखेगा। उनका निजी जीवन भी मतलब आसान नहीं था। एस्टेल ओल्डहम से शादी हुई लेकिन उसमें तनाव रहा। शराब की लत से भी वो काफी संघर्ष करते रहे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में एक पुराना घर खरीदा था, रोवन ओक नाम रखा उसका, उसे बड़े प्यार से संवारा। वो शायद उनके लिए एक ठिकाना था, अपनी जड़ों से जुड़ने का एक जरिया।
और फिर अचानक जैसे सब कुछ बदल गया, नोबेल पुरस्कार मिला उन्हें।
हाँ, 1950 में मिला नोबेल पुरस्कार, घोषित 1949 में हुआ था। वो एक बहुत बड़ा, एक धमाके जैसा था। आप सोचिए, उस वक्त उनकी कई बेहतरीन किताबें आउट ऑफ प्रिंट थी।
अरे
जी, तो इस पुरस्कार ने उन्हें गुमनामी से निकालकर सीधे दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक मंच पर खड़ा कर दिया। इसके बाद उनकी पहचान बनी, प्रतिष्ठा बढ़ी और जीवन के जो आखिरी साल थे उनमें वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल, एक नैतिक आवाज के तौर पर भी उभरे। फिर 1962 में घोड़े से गिरने के कुछ समय बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।
चलिए अब उन रचनाओं पर आते हैं जिन्होंने फॉकनर को फॉकनर बनाया। आपने चेतना प्रवाह और समय के साथ खिलवाड़ का जिक्र किया था, यही उनकी शैली की मुख्य पहचान है।
हाँ, ये उनकी खास पहचान है। एक और चीज है स्तरित समय, लेयर टाइम, मतलब अतीत कैसे वर्तमान को लगातार प्रभावित करता है, कैसे वर्तमान चेतना में अतीत की परतें घुली मिली रहती हैं।
अच्छा, ये कैसे काम करता है?
सोचिए, जैसे वर्तमान एक कमरा है और उस कमरे में अतीत की खिड़कियां और दरवाजे हर तरफ खुले हुए हैं, जिनसे पुरानी आवाजें, पुरानी यादें, पुराना दर्द, ये सब लगातार अंदर आते रहते हैं। फॉकनर का समय कुछ ऐसा ही महसूस कराता है। वो कहते थे ना, अतीत कभी मरता नहीं, वो बीता भी नहीं है। ये तकनीक पाठक को सीधा किरदार के मन की उथल पुथल में, उसकी भावनाओं के भंवर में खींच लेती है।
तो द साउंड इन द फ्यूरी 1929 शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। कॉम्पशन परिवार के पतन की कहानी और वो चार अलग अलग नजरिए।
बिल्कुल, और उसमें भी खासकर बेंजी का नजरिया। बेंजी जो मानसिक रूप से अक्षम है, जिसके लिए समय का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ जैसे एक साथ घट रहा है अभी इसी पल में। इसे पढ़ना आसान नहीं है शुरू में।
हाँ, मैंने सुना है।
लेकिन ये दिखाता है कि कैसे अतीत का बोझ, कैसे नस्ली अपराध बोध और परिवार का विघटन किसी खानदान को अंदर से खोखला कर देता है।
और एज आई ले डाइंग 1930, जिसमें वो बुंडरिन परिवार अपनी माँ के शव को दफनाने के लिए एक अजीब सी यात्रा पर निकलता है।
हाँ, वो भी एक कमाल का उपन्यास है। 15 अलग अलग किरदार हैं और हर कोई अपने नजरिए से कहानी बता रहा है। सबके अपने स्वार्थ हैं, अपनी सोच है, उसमें दुख है, हानि है, प्रेम भी है, लेकिन साथ ही एक गहरा काला व्यंग्य भी है।
अच्छा,
ये दिखाता है कि बड़ी से बड़ी त्रासदी के बीच भी इंसान अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और जुनूनों में कैसे उलझा रह सकता है। ये उनके प्रयोगधर्मिता का एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन क्योंकि इसमें छोटे छोटे अध्याय हैं अलग अलग किरदारों के, तो शायद ये द साउंड एंड द फ्यूरी से थोड़ा ज्यादा पठनीय लगता है कुछ लोगों को।
अगर कोई फॉकनर को पढ़ना शुरू करना चाहे तो क्या लाइट इन ऑगस्ट 1932 एक बेहतर विकल्प है? मैंने सुना है कि ये तुलनात्मक रूप से थोड़ी सीधी कहानी है।
हाँ, तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं। कहानी की बनावट थोड़ी सीधी है लेकिन मुद्दे उतने ही गहरे और जटिल हैं। इसमें दो मुख्य किरदार हैं, जो क्रिसमस, जिसकी नस्लीय पहचान साफ नहीं है और जो इस वजह से समाज से कटा हुआ है, एक त्रासद नायक है, और दूसरी तरफ लीना ग्रोव है, जो अपने बच्चे के पिता को ढूंढ रही है। ये उपन्यास नस्लीय कट्टरता, पूर्वाग्रह, अकेलापन, धार्मिक जुनून, इन सब की भयावहता को बहुत शिद्दत से दिखाता है। ये फॉकनर की दुनिया और उनके जो मुख्य सरोकार हैं उनको समझने के लिए एक अच्छा प्रवेश द्वार हो सकता है।
और फिर है एब्सलम एब्सलम 1936। इसके बारे में कहा जाता है कि ये शायद उनका सबसे जटिल और महत्वाकांक्षी उपन्यास है।
हाँ, शायद है भी। ये थॉमस सटपेन की कहानी है, एक ऐसा आदमी जो शून्य से उठकर अपना एक विशाल साम्राज्य बनाता है, लेकिन उसकी जो क्रूर महत्वाकांक्षा है और उसका नस्लवाद, वो आखिरकार उसे और उसके पूरे परिवार को ध्वंस कर देता है।
लेकिन कहानी सीधी नहीं बताई जाती है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी सीधे बताई नहीं जाती। कई अलग अलग लोग कई पीढ़ियों के बाद उस कहानी के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर सच जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हों। तो ये उपन्यास सिर्फ स्नोप्स की कहानी नहीं है, ये इस बारे में भी है कि इतिहास बनता कैसे है, हम अतीत को कैसे याद करते हैं, कैसे सुनाते हैं, कैसे गढ़ते हैं।
वापरे,
इसकी भाषा बहुत सघन है, वाक्य बहुत लंबे और जटिल हैं। ये पाठक से पूरी एकाग्रता और धीरज मांगता है।
और बाद में उन्होंने वो स्नूप्स ट्रायलॉजी भी लिखी थी, द हैमलेट, द टाउन, द मैंशन। ये शायद दक्षिण के बदलते हुए समाज पर एक टिप्पणी थी।
हाँ, बिल्कुल। ये अवसरवादी चालाक स्नोप्स परिवार के उदय की कहानी है, कैसे ये लोग पुराने कृषि आधारित दक्षिण के मूल्यों को ताक पर रखकर नए वाणिज्यिक लालची दक्षिण पर हावी हो जाते हैं। ये फॉकनर का अपने समय के जो सामाजिक बदलाव थे उनका एक गहरा विश्लेषण था।
तो इन महान रचनाओं को पहचान मिलने में काफी वक्त लगा। जैसा आपने बताया, नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ।
हाँ, बहुत बड़ा। नोबेल ने न सिर्फ फॉकनर को वैश्विक पहचान दिलाई, बल्कि इसने अमेरिकी आलोचकों को भी और पाठकों को भी उनके काम को गंभीरता से लेने पर मजबूर किया। आप सोचिए, उससे पहले कई महान रचनाएं आउट ऑफ प्रिंट थी।
ये तो कमाल है।
नोबेल के बाद फिर उन्हें दो पुलित्जर पुरस्कार मिले, एक ए फेबल के लिए और एक मरणोपरांत द रिवर्स के लिए। दो नेशनल बुक अवार्ड भी मिले। तो इन सम्मानों ने उनकी जगह अमेरिकी साहित्य में और विश्व साहित्य में और पक्की कर दी।
और उनकी विरासत, उनका असर किन पर पड़ा, कहाँ तक फैला?
उनका असर बहुत गहरा है और बहुत दूर तक फैला है। एक आलोचक थे मैल्कम काउली, उनकी किताब आई थी द पोर्टेबल फॉकनर 1946 में। उसने फॉकनर को आम अमेरिकी पाठकों तक पहुंचाने में बहुत मदद की।
अच्छा।
दक्षिण के जो लेखक बाद में आए, जैसे फ्लैनरी ओ'कॉनर, कॉमैक मकार्थी, यहां तक कि टोनी मॉरिसन, उन पर उनका प्रभाव साफ दिखता है। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प है उनका असर लातिन अमेरिकी लेखकों पर, खासकर गैब्रियल गार्सिया मार्केस।
हाँ, मार्केस पर भी।
हाँ, मार्केस ने खुद कहा था कि फॉकनर को पढ़कर ही उन्हें ये विश्वास हुआ कि वो अपने छोटे से गांव मैकोंडो के बारे में लिखकर भी उसे पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक बना सकते हैं, जैसे फॉकनर ने युकना पटाफा के साथ किया था।
तो मतलब युकना पटाफा सिर्फ मिसिसिपी का एक काल्पनिक कोना नहीं रहा।
हाँ,
बल्कि वो पूरी मानव स्थिति का, पूरी दुनिया का एक आईना बन गया।
बिल्कुल, बिल्कुल। यही उनका शायद सबसे बड़ा योगदान है इस योगना पटाफा काउंटी का निर्माण। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जो इतनी असली लगती है कि आप उसके नक्शे देख सकते हैं, उसके परिवारों की कई पीढ़ियों की कहानियां पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा क्षेत्रीय होकर भी पूरी तरह सार्वभौमिक है।
और दूसरा बड़ा योगदान, जाहिर है, उनकी वो क्रांतिकारी कथा तकनीकें रहीं।
हाँ, बिल्कुल। चेतना प्रवाह, मल्टीपल नरेटर्स, यानी कई नजरियों से कहानी कहना, समय को इस तरह तोड़ना मरोड़ना, इन सब तकनीकों से उन्होंने उपन्यास लिखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। और उनकी भाषा भी, वो लंबे जटिल वाक्य जिनमें बाइबल जैसी लय होती थी और साथ में स्थानीय बोली का मिश्रण, ये सब मिलके एक ऐसी अनूठी शैली बनाते हैं जिसे आप पढ़ते ही पहचान सकते हैं कि ये फॉकनर है।
और तीसरा अहम योगदान, जो मुझे लगता है आज के समय में भी बहुत मायने रखता है, वो है नस्लवाद पर उनका बेबाक नजरिया।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो उन शुरुआती श्वेत दक्षिणी लेखकों में से थे जिन्होंने नस्लवाद के सिर्फ सामाजिक असर को नहीं, बल्कि उसके गहरे मनोवैज्ञानिक और नैतिक परिणामों को इतनी ईमानदारी और जटिलता से दिखाया। उन्होंने दिखाया कि ये जहर कैसे इंसानी रूह में उतर जाता है, कैसे रिश्तों को खोखला कर देता है। उन्होंने दक्षिणी गौथिक शैली, जिसमें पहले से ही विभत्सता और शय का पुट था, उसे एक नई मनोवैज्ञानिक गहराई दी। उसमें सिर्फ बाहरी भयावहता नहीं थी, बल्कि मन के अंधेरे कोने भी शामिल थे।
ये सब सुनकर तो लगता है कि फॉकनर को पढ़ना वाकई जरूरी है, लेकिन ये सवाल फिर आता है कि शुरुआत कहाँ से करे। आपने लाइट इन ऑगस्ट और एज आई ले डाइंग का जिक्र किया था पहले, कोई और सुझाव देना चाहेंगे?
हाँ, देखिए, अगर किसी को सीधे उपन्यास में कूदने में झिझक हो तो लघु कहानियों से शुरुआत करना हमेशा एक अच्छा विकल्प रहता है। उनकी कहानी है ए रोज फॉर एमिली। ये क्लासिक है।
हाँ, मैंने पढ़ी है ये।
अच्छा, तो आप जानती होंगी, छोटी है कहानी, भी अपेक्षाकृत सीधी है, लेकिन उसमें फॉकनर के जो खास विषय हैं, परंपरा का बोझ, अकेलापन, अतीत का साया, क्षय, वो सब मौजूद हैं। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
और अगर कोई पाठक थोड़ी चुनौती के लिए तैयार हो, मतलब जो उनकी जटिलता का सामना करना चाहे,
तो फिर मैं कहूंगा द साउंड इन द फ्यूरी या एब्सलम एब्सलम। ये मुश्किल जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये फॉकनर के जीनियस का शिखर है। इन्हें पढ़ने का जो अनुभव है वो शायद आप कभी भूलेंगे नहीं, ये आपको झकझोर कर रख देते हैं।
भी कही, अतीत कभी मरता नहीं,
ये बीता भी नहीं है। द पास्ट इज नेवर डेड, इट्स नॉट इवन पास्ट।
ये उनके उपन्यास रेक्वियम फॉर अ नन से है, और ये उनके पूरे लेखन का, उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण का सार है। इतिहास, अतीत, वो हमारे साथ चलता है, हमारे अंदर जीता है, हमारे आज को बनाता है।
और उनके नोबेल पुरस्कार भाषण की वो उम्मीद भरी पंक्ति,
हाँ, वो भी बहुत शक्तिशाली है। मेरा मानना है कि मनुष्य केवल सहेगा नहीं, वो विजयी होगा।
आई बिलीव दैट मैन विल नॉट मेयरली एंड्योर, ही विल प्रिवेल।
सोचिए, वो परमाणु युग की शुरुआत थी, दुनिया डर के साए में जी रही थी। उस माहौल में यह कहना इंसान की हिम्मत, उसकी सहन शक्ति और उसकी जिजीविषा में गहरा विश्वास दिखाता है।
एक और पंक्ति है जो मुझे हमेशा बहुत अजीब लेकिन असरदार लगती है। एज आई ले डाइंग से, जब वो छोटा बच्चा वरदामन अपनी माँ की मौत के बाद कहता है, मेरी माँ एक मछली है।
माय मदर इज अ फिश।
हाँ, है ना, ये दिखाती है कि गहरा दुख और सदमा भाषा को कैसे तोड़ मरोड़ देता है, खासकर एक बच्चे के मन में। वो उस भयानक सच्चाई को जिसे वो समझ नहीं पा रहा, उसे किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। फॉकनर ऐसी सीधी लेकिन दिल पर चोट करने वाली मनोवैज्ञानिक रूप से सच्ची भाषा के उस्ताद थे।
एक और कथन है द वाइल्ड पाम से, शोक और शून्यता के बीच मैं शोक चुनूंगा। बिटवीन ग्रीफ एंड नथिंग आई विल टेक ग्रीफ। इसका क्या मतलब निकालें? ये थोड़ा निराशावादी नहीं लगता?
नहीं, मुझे लगता है ये निराशावादी नहीं बल्कि जीवनवादी है। शायद इसका मतलब ये है कि महसूस करना, जीना, भले ही उसमें दर्द हो, पीड़ा हो, वो कुछ भी महसूस ना करने, यानी एक तरह की भावनात्मक मौत या शून्यता से बेहतर है। जीवन के अनुभव, चाहे वो कितने भी कड़वे क्यों ना हो, वही हमें इंसान बनाते हैं। उदासीनता, भावनात्मक शून्यता, वो एक तरह की हार है। शोक चुनने का मतलब है कि आप अब भी महसूस कर रहे हैं, आप जिंदा हैं। ये एक अलग नजरिया है। अच्छा, फॉकनर के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं। जैसे वो नाम बदलने वाली बात तो हुई, लेकिन वो पोस्टमास्टर वाली नौकरी का क्या किस्सा है?
हाँ, वो कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी पोस्टमास्टर रहे थे ऑक्सफोर्ड में। लेकिन कहते हैं कि काम में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो चिट्ठियां पढ़ते रहते थे या कूड़ेदान में फेंक देते थे। आखिरकार उन्हें निकाल दिया गया।
सच में?
हाँ, और ये भी बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है कि जो लेखक खुद हॉलीवुड में एक सफल पटकथा लेखक रहा, जिसने क्लासिक फिल्मों के लिए लिखा, उसकी अपनी जटिल कहानियों को पर्दे पर उतारना इतना मुश्किल साबित हुआ है।
हाँ, क्यों?
शायद इसलिए कि उनकी असली ताकत उनके गद्दे में है, उनकी भाषा में है, उनके किरदारों के मन की गहराइयों में उतरने में है। वो जो चेतना प्रवाह है, वो जो समय का आगे पीछे होना है, उसे स्क्रीन पर दिखाना बहुत मुश्किल है। कोशिशें हुई हैं, जैसे जेम्स फ्रैंको ने हाल में एज आई ले डाइंग और द साउंड इन द फ्यूरी बनाने की कोशिश की,
लेकिन आलोचकों का मानना है कि वो फिल्में भी फॉकनर के गद्दे की पूरी शक्ति और जटिलता को पकड़ नहीं पाई। शायद उनका असर सीधे रूपांतरणों से ज्यादा टेरेंस मलिक या कोएन ब्रदर्स जैसे फिल्मकारों पर दिखता है, जिन्होंने उनकी तकनीकों को, उनके माहौल को अपनी सिनेमाई भाषा में ढाला है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हम सोचें तो फॉकनर हमें किस एक खास सोच के साथ छोड़ जाते हैं, कोई एक अंतिम विचार?
मुझे लगता है फॉकनर हमें सबसे ज्यादा इस बात पर सोचने को मजबूर करते हैं कि हम कहानियों को कैसे बनाते हैं, कैसे याद करते हैं और कैसे उन पर विवाद करते हैं, चाहे वो हमारी अपनी व्यक्तिगत कहानियां हों, हमारे परिवार की हों या हमारे समाज और देश की। जैसे एब्सलम एब्सलम उपन्यास में होता है, जहां कई अलग अलग लोग एक ही अतीत को बिल्कुल अलग अलग तरह से याद करते हैं और सुनाते हैं। सच कहीं उन सबके बयानों के बीच में छिपा होता है, या शायद उन सबसे परे होता है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम जिस अतीत को सच मानते हैं, जिस इतिहास को हम जानते हैं, उसमें कितना तथ्य है और कितनी वो कहानियां जो हमने खुद चुनी हैं या जिसे मानने की हमें जरूरत है। हम इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, एक तरह से हम उसे चुनते भी हैं। हर पीढ़ी उसे अपने नजरिए से गढ़ती भी है।
ये वाकई बहुत गहरी बात है। कि हमारी यादें और हमारा इतिहास वो कितना गढ़ावा हो सकता है। खैर, इस बेहद दिलचस्प और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।